समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
हेलो जया, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड ऑन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल यस, दिस लिसनर्स इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वी आर डेल्विंग इनटू द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग। एंड जया, आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ क्वोट बाय रोल्ड डाल। टुडे इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी। वेल, मोर ऑन दैट इन द प्रोग्राम, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। लेट मी शेयर द क्वोट विद यू लिसनर्स, इट कैन definitely make your day. Well, yes, if you have good thoughts, they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely. Well,
बिल्कुल शगुन, आपके अंदर जो चल रहा है वो आपके चेहरे पे तो आ ही जाता है, चाहे आप कितना भी छुपा ले, तो अच्छी सोच रहेगी, अच्छा ही चमक आएगी चेहरे पे।
Well, well said, Jaya. You should always have good thoughts. Well, always keep motivating yourself, listeners, because yes, if you stick to your inspirational thoughts and good thoughts, then you will definitely achieve your goals. Well, let me first give you a brief description of the program. Well, first, listeners, we'll share the latest in national and international news. This is the first segment. Then we'll provide you Metro City updates. And today it's 13th of September. So we'll also explore the historical information which is related to today. And yes, the personality section is at the end of the program.
और जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण सेक्शन है इस पूरे प्रोग्राम का, उसमें बहुत कुछ खास होने वाला है आज, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
Yes.
सबसे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी सबसे पहले मिजोरम के आइजोल में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मणिपुर में 8.5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी आज दोपहर चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी असम के गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। रविवार को प्रधानमंत्री राज्य में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।
The National Payments Corporation of India, NPCI, has announced a major revision of the Unified Payments Interface, UPI, limit for person-to-merchant, P2M, transactions, which will come in effect from Monday. According to the circular issued by NPCI last month, the new UPI rules are designed to make high-value digital payments easier and more secure for Indian users. After this change, users can now make UPI merchant transactions of up to 10 lakh rupees in a single day for selected verified categories. However, the UPI limit for person-to-person, which is P2P transfers, remains unchanged at 1 lakh rupees per day.
और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और कानून के शासन, स्थिरता, गुणवत्ता मानकों और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्री स्तर व्यावसायिक संवाद में उन्होंने कहा कि इस साझेदारी को न केवल व्यापार विस्तार के संदर्भ में बल्कि विश्वव्यापी व्यापक सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी।
I think it's important that we look upon this relationship not purely from the lens of what we can do to expand trade between Europe and India, but for the larger impact this partnership can have worldwide. Her Excellency President Ursula von der Leyen had very rightly said, and I'd like to quote, "In an era of conflicts and intense competition, you need trusted friends. For Europe, India is such a friend."
India has welcomed the formation of a new interim government in Nepal, led by Right Honorable Sushila Karki. In a statement, External Affairs Ministry said that New Delhi is hopeful that this would help in fostering peace and stability. The ministry further stated that as a close neighbor, a fellow democracy and a long-term development partner, India will continue to work closely with Nepal for the well-being and prosperity of the people of both countries. Former Chief Justice Sushila Karki was sworn in as Prime Minister of Interim Government yesterday. Our Kathmandu correspondent has filed this report.
Former Chief Justice Sushila Karki took oath as Prime Minister of Interim Government in Nepal. President of Nepal Ramchandra Podil administered her the oath. Ceremony was attended by Vice President Rambaran Yadav and other dignitaries in Sheetal Nivas. After intensive discussion from last 3 days and formal dialogue at President Office Sheetal Nivas, it was decided to appoint former Chief Justice Sushila Karki as the head of Interim Government. Sushila Karki becomes the first woman Prime Minister of Nepal. She is the first woman Chief Justice of Nepal who was widely praised for her integrity. Her appointment aligns with the demand of protesting Gen Z demonstrators who have been calling for immediate dissolution of Parliament and leading the interim government free from the existing corrupt political leaders. Shweta Singh, Kathmandu.
नवीन और अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि भारत हरित हाइड्रोजन नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है। नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन कई क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करेगा और नए व्यापार क्षेत्र खोलेगा तथा एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की राह पर है। श्री नाइक ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में नवाचार, विनिर्माण और उपयोग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा।
U.S. President Donald Trump has acknowledged that his decision to impose steep tariffs on India for its purchase of Russian oil strained ties with New Delhi, even as he struck up an optimistic note about ongoing trade negotiations. In an interview with a private TV channel, President Trump said that imposing 50% tariffs on India was not an easy thing to do and was a big deal for United States. His remarks came in response to a question on the likely action against Russia for continuing the conflict in Ukraine. Well, listeners, India has voted in favor of a resolution in the UN General Assembly that endorses the New York Declaration on peaceful settlement of the Palestine issue and implementation of the two-state solution. Well, the resolution introduced by France was adopted with an overwhelming 142 nations voting in favor, 10 against and 12 abstentions. Those voting against included Argentina, Hungary, Israel and the United States. India was among the 142 nations that voted in favor of the resolution titled Endorsement of the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution.
और अब खेल जगत की हलचल जानते हैं हमारी सहयोगी दीपमाला कौशिक से।
जया, हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग वेई से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 8:20 से खेला जाएगा। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:10 से खेला जाएगा। जापान के टोक्यो में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। ये चैंपियनशिप 18 सितंबर तक चलेगी। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती रखेंगे। वहीं समरकंद में कल फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के 8वें राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियन डी गुकेश और दिव्या देशमुख की बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई। अन्य मुकाबले में विदित गुजराती जर्मनी के ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर से हार गए, जबकि वैशाली रमेश बाबू को कजाकिस्तान की बिबिसारा अससोबाएवा शाह ने हराया। भारत के जूनियर विश्व चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने दो बार के कैंडिडेट्स विजेता रूस के इयान नेपोमनियाचची के साथ ड्रॉ खेला। ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन की बाजी भी जर्मनी के मैथियास ब्लूबाम के साथ ड्रॉ रही। अर्जुन एरिगेसी ने अर्मानिया के शांत सार्गस्यान के साथ ड्रॉ खेला। आर प्रज्ञानंद ने हंगरी के ग्रैंड मास्टर रिचर्ड रिपोर्ट को बराबरी पर रोका। तो अब वापस चलते हैं जया और शगुन के पास।
धन्यवाद दीपमाला इस तमाम अपडेट्स के लिए। और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। सबसे पहले शुरुआत
चेन्नई से। Well, all public service buses, taxis and auto rickshaws in the state will have to install vehicle location tracking devices. The devices will be connected to a 24/7 control room to be set up at the Transport Department's headquarters at Guindy. The State Home Secretary had issued an order directing the Transport and Road Safety Commissioner to ensure trackers on all public service vehicles. Transport Commissioner R. Gajalakshmi said trackers are mandatory to get fitness registration, permit issuance and also renewals. Well, she said that about 14 lakh vehicles, they are to be brought under the net. She said that the live tracking will help the government track and then will help the safety of passengers during late night travels especially, and help in emergency response in case of accidents on highways, and also alert police in case of crimes anywhere in the state. So a really good initiative this is.
बिल्कुल। और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। तो दिल्ली मेट्रो DMRC ने मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए DMRC के सारथी ऐप पर UPI भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। दिल्ली मेट्रो ने सारथी ऐप के माध्यम से DMRC पे पावर्ड बाय भीम फीचर लॉन्च किया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
इससे यात्रियों को अब टिकट खरीदने के लिए किसी दूसरे UPI ऐप की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप से यात्री दिल्ली मेट्रो, DTC बसों और नोएडा मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट खरीदने और कार्ड रिचार्ज करने का लाभ उठा सकते हैं। DMRC और भीम वेगा की साझेदारी से सारथी ऐप पर यात्री UPI ID रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे यात्री बैंक अकाउंट या रुपे कार्ड लिंक करके तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने अपनी कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक द विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। एक समझौता ज्ञापन के तहत इंट्यूटिव सर्जिकल द्वारा प्रदान किया गया यह रोबोट एम्स में रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जरी में प्रशिक्षण के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। इस रोबोट के साथ एम्स नई दिल्ली अब देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसके पास केवल प्रशिक्षण के लिए दो सर्जिकल रोबोट हैं।
Well, now we are heading to Bengaluru. Karnataka Energy Minister K.J. George has assured that the Sharavati pumped storage project will not cause significant ecological damage. Speaking in Chikmagalur, he said that the 2000 megawatt project approved by the Central Wildlife Board will begin after addressing environmental concerns. The project requires 120 acres of land, half privately owned and the rest government and forest land. He promised compensation for landowners and alternative land for the forest department. Once completed, the project will generate low-cost electricity.
और अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC राज्य भर के 75 प्रमुख बस स्टेशनों पर निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगा। परिवहन मंत्री और MSRTC के अध्यक्ष प्रताप सरनायक ने कहा है कि इन पुस्तकालयों में प्रसिद्ध लेखकों की मराठी साहित्यिक कृतियां होंगी। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ MPSC और UPSC उम्मीदवारों के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। अगर आप इनमें से कोई पुस्तक लेना चाहते हैं तो डिपो कर्मचारियों के पास पंजीकरण कराकर निःशुल्क ले सकते हैं। महाराष्ट्र से एक और खबर है शगुन हमारे पास, जहां महाराष्ट्र सरकार ने अकेले रहने वाली महिलाओं तक मिशन वात्सल्य योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कल इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अनाथों और विधवा महिलाओं के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई यह योजना अब राज्य भर में किसी भी कारण से अकेले जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पेंशन, आवास और सामाजिक सुरक्षा के लाभों से जोड़ने के लिए कवर करेगी।
एक और पब्लिक इंटरेस्ट की खबर बता दूं कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक विक्रोली पूर्व स्थित छत्रपति संभाजी महाराज मैदान में मराठी इंडिया डांडिया का आयोजन करेगी। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्ते के साथ मराठी सिनेमा और बॉलीवुड के प्रमुख कलाकार भी शामिल होंगे।
Well, a positive update is coming. Rather, two positive updates are coming from Hyderabad now, Jaya. The Directorate General of Quality Assurance will set up a center of excellence for drones in Hyderabad, aiming to boost indigenous capabilities in unmanned aerial systems. The announcement was made by ADG Radar and Systems, R.A. Govardhan, during a seminar on military drone quality assurance in Secunderabad. Another update from Hyderabad, the Greater Hyderabad Municipal Corporation has proposed the preservation and development of 12 historic structures. They include Purana Pul Darwaza, Sir Ronald Ross Building and the Old Gun Foundry. And the project will focus on preservation, site development and also adaptive reuse.
और अब चलते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी की ओर, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने कल राज्य के नेपाल सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। शगुन, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए नेपाल से सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई जगहों पर नाकाबंदी की है। पुलिस सशस्त्र सीमा बल और एसएसबी के साथ भी समन्वय कर रही है। एसएसबी के जवान सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे गश्त कर रहे हैं।
जी,
तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार।
यस, नाउ लिसनर्स, अगेन वी आर बैक।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आज सामान्य बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा की भी संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगर कोलकाता की बात करें तो हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
एंड्रिया, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर इन अदर सिटीज एज वेल। फर्स्ट, चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru, if I talk about Bengaluru, it is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky again with a few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 27 degrees Celsius, listeners. Now, let's delve into the history, right? The historical information related to today. First, let's begin with the year 1500. Well, Pedro Alvarez, Portuguese businessman, he reached Calicut and then established the first European factory in India.
और आज ही के दिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और फ्रांस के बीच एस्नी की लड़ाई शुरू हुई थी।
Going a little back there, 1788, New York City became America's first capital.
और 1948 में उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद में घुसकर ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया था। और शगुन, ये सफल भी रहा था, जिसके बाद हैदराबाद निजाम के अत्याचारों से मुक्त हो सका था।
वेल, यस, एंड नाउ इन द ईयर 1977 द फर्स्ट डीजल ऑटोमोबाइल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल मोटर्स। इन द ईयर 1985 सुपर मारियो ब्रदर्स, which is one of the best selling and most influential games ever, everybody's childhood, it was first released for NES in Japan.
शगुन, मैं थोड़ा इससे पहले जाना चाहूंगी, आज ही के दिन 1968 में अल्बानिया वॉर्सा संधि से अलग हुआ था। और वही 2000 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने चेन्यान में पहला फिडे शतरंज विश्व कप जीता था।
एंड देन इन द ईयर 2005, राइट,
बिल्कुल, तो 2005 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानकों की घोषणा की थी। वहीं 2006 में इब्सा यानी कि भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो त्रिगुटिया संगठन है, इसका पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में शुरू हुआ था।
इन द ईयर 2007 बुर्ज दुबई इट बिकेम द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड एंड इन 2009 द टीथ एंड बोन्स ऑफ मेनी एनिमल्स दे वर डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इनसाइड अ केव एंड दिस वाज इन डेवन इंग्लैंड।
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
जी,
सबसे पहले शुरुआत करते हैं जतेंद्र नाथ दास से। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, वे भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है जिन्होंने देश की आजादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए और शहादत पाई। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है, जबकि संगी साथी इन्हें प्यार से जतिंदा कहा करते थे। जतेंद्र नाथ दास कांग्रेस सेवा दल में सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। भगत सिंह से भेंट होने के बाद ये बम बनाने के लिए आगरा आ गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो बम केंद्रीय असेंबली में फेंके थे, वे इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। जेल में क्रांतिकारियों के साथ राजबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से अनशन आरंभ कर दिया। जतेंद्र नाथ भी इसमें सम्मिलित हुए थे और अनशन के 63वें दिन जेल में ही इनका देहांत हो गया था।
सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का।
Well, yes, we salute the brave heart. Listeners, remember I was telling you about, I was actually sharing a quote in the beginning. I shared it with you in the beginning. Today, we're also remembering Roald Dahl. Well, today, it's his birth anniversary. The popular author of children's literature and also short stories, a poet and also a screenwriter. His books, they have sold more than 300 million copies worldwide. And also, he has been called one of the greatest storytellers for the children of the 20th century. So, listeners, going a little back, he rose to prominence as a writer. This was in the year 1940s with works for children and also for adults, and then became one of the world's best-selling authors. Well, if I tell you about his awards and accolades, these awards for contribution to literature include the 1983 World Fantasy Award for Lifetime Achievement, Life Achievement, and the British Book Awards Children's Author of the Year. This was in the year 1990, listeners. And also Dahl's short stories, they are known for their unexpected endings, and his children's books, they offer unsentimental, also often darkly comic mood, featuring villainous adult enemies of the child characters. So his works for children, let me name them for you. They include James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, also Matilda, The Witches. So many interesting names there, listeners. I was telling you about Roald Dahl.
और भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक श्रीधर पाठक ने भी आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था। वे स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और समाज सुधार की भावनाओं की कवि थे। उनकी मुख्य रचनाओं में वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, गोपिका गीत, मनोविनोद आदि शामिल हैं। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन के सभापति हुए थे। उन्हें कवि भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था।
Listeners, today we are also remembering Charles Brown. Well, Tony Russell Charles Brown, the pianist and also a singer whose soft-toned, slow-paced nightclub style it influenced West Coast blues in the 1940s and also 1950s. Well, between 1949 and 52, he had several top 10 hits, and I have chosen such a hit for you. This is Trouble Blues. Listen in.
आज ही जयंती है परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की। उन्हें यह सम्मान सन 1987 में मरणोपरांत मिला। भारत की सेनाओं ने हमेशा युद्ध के लिए हथियार नहीं उठाए, बल्कि ऐसा भी मौका आया जब उसकी भूमिका विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने की रही। श्रीलंका में ऐसे ही उदाहरण के साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ है। विस्तृत इतिहास के बीच एक प्रसंग ऑपरेशन पवन का है, जो 1987 से 1990 तक श्रीलंका में चला, जिसमें भारतीय सेना के वीर मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ने शांति विरोधी तत्वों के हाथों अपने प्राण गंवाए और इसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
Well, we salute the brave heart for his courage and valor. Listeners, today we are also remembering William Smith Monroe, or as his fans popularly call him, Bill Monroe. Well, a singer and songwriter, he created the bluegrass music genre. This was created by him, and because of this, he's often called the father of bluegrass. Well, the genre takes its name from his band, the Bluegrass Boys. And who named their group for the bluegrass of Monroe's home state? This was Kentucky. And I have chosen such a song which includes this particular name, Kentucky. So listen in, listeners. Well, we were listening to Bill Monroe's song, Blue Moon of Kentucky.
और आज ही जयंती है भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभात्री की। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाना उनका सपना था। उनका मानना था कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। किराना घराने की सशक्त हस्ताक्षर स्वर योगिनी प्रभा अत्रे को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2022 में दिया गया। प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय संगीत के विषय पर संगीत पढ़ाती रही थी, व्याख्यान प्रदर्शन करती रही और लिखती रही। विदेशों में कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर भी रही। उनके नाम एक चरण में 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड भी है।
Well, yes, we are listening to Prabhatri's wonderful melodious voice. She was 8 when Indira Bai, she was a friend, was not keeping good health. And at a friend's suggestion that classical music lessons would help her feel better, she took a few lessons. And listening to those lessons, this inspired her to learn classical music. And hence, we can hear her music and her wonderful, wonderful, beautiful voice. Well, let me talk about another musician now, Jaya, Melvin Howitt Thorme, Mel Thorme. And he has been nicknamed as Velvet Fog, musician, singer, composer, arranger and drummer. Well, he composed the music for the Christmas song. But the song which I have chosen, along with this particular song, Sonny Boy, well, for this also, he won Grammy Award. Let's listen into that.
Climb upon my knees, Sonny Boy. You're only 83, sunny boy.
आज ही जयंती है जेबीएच वाडिया के नाम से प्रसिद्ध जमशेद बोमन होमी वाडिया की। वे भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और वाडिया मूवीटोन स्टूडियो के संस्थापक थे। उनका जन्म सूरत गुजरात में हुआ था, एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में जिनका पैतृक व्यवसाय जहाज निर्माण था। उद्यमियों के परिवार में वाडिया को फियरलेस नाडिया सहित लोकप्रिय स्टंट भूमिकाओं वाली फिल्मों के निर्माण और भारतीय सिनेमा में स्टंट अभिनेत्रियों की अवधारणा लाने का श्रेय दिया जाता है। आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्देशित फिल्म मदहोश का एक गीत। नब्बे के दशक के स्टार एक्ट्रेसेस में शुमार महिमा चौधरी आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। शाहरुख खान के साथ फिल्म परदेस में डेब्यू करने वाली महिमा ने देखते ही देखते दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। इस फिल्म के लिए महिमा चौधरी को बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म का गीत सुनते हैं। श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार, नमस्कार।